नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये जुड़ा है जुलाई 1984 के एक महत्वपूर्ण उद्बोधन से जो पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया था। उनकी सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान शीर्षक था विशिष्ट वेला में विशिष्ट साधना, और हां, ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था। इसमें जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात थी, वो थी पूज्य गुरुदेव का अपने अनुयायियों से सीधा संपर्क खत्म करके एकांतवास में जाने का निर्णय।
तो सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसका क्या मतलब था?
जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि पूज्य गुरुदेव ने इसे पलायन या कोई निष्क्रियता बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि यह उनके गुरु का आदेश था और एक सोची समझी, मतलब आध्यात्मिक रणनीति थी। असल में उद्देश्य था कि जो वैश्विक संकट बढ़ रहे थे, जैसे प्रदूषण, जनसंख्या, नैतिक पतन, यहां तक कि युद्ध के खतरे, उनसे निपटने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करना। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे हम सूर्य की किरणों को एक आतिशी शीशे से इकट्ठा करते हैं।
हाँ बिल्कुल, ताकि वो एक जगह केंद्रित होकर शक्तिशाली हो जाएं।
तो वो अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह ला रहे थे।
बिल्कुल सही, उन्होंने खुद इसे बिखराव को रोककर एक दिशा में सुनियोजन कहा। वो मानते थे कि आने वाला समय और भी मुश्किल होगा और उसके लिए केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए ही होगी।
लेकिन ये एकांत था कैसा? मतलब क्या वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे, दुनिया से कट गए थे?
नहीं नहीं, निष्क्रियता बिल्कुल नहीं। उन्होंने समझाया कि ये गहन आंतरिक तैयारी का समय था, जैसे माँ के गर्भ में शिशु धीरे धीरे आकार लेता है, या जैसे बिल्ली भी एकांत में ही बच्चे देती है, ये वैसी ही प्रक्रिया थी शक्ति जमा करने की। उन्होंने मिसाल भी दी श्री अरविंद, रमन महर्षि जैसे संत, जो एकांत और मौन से ही समाज पर, स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा असर डाल गए। यहां तक कि शिव और विष्णु के एकांतवास का भी जिक्र किया, ये बताने के लिए कि बड़े काम अक्सर एकांत में ही सधते हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प है, पर एक सवाल जो शायद बहुतों के मन में आया होगा कि क्या इससे उनका अपने अनुयायियों से संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया?
हाँ, ये सवाल लाजमी है, पर पूज्य गुरुदेव ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं, संपर्क बना रहेगा, लेकिन वाणी के अलग, ज्यादा सूक्ष्म रूपों से। उन्होंने तीन रूपों का जिक्र किया, मध्यमा यानी हाव भाव संकेतों से, परा यानी विचारों के स्तर पर, और पश्यंती अंतरात्मा की आवाज के जरिए।
ओ, तो मतलब शारीरिक मौजूदगी से ज्यादा महत्व विचारों और सिद्धांतों से जुड़ने का था?
हाँ बिल्कुल, जोर इसी बात पर था कि अनुयायी भौतिक रूप से पास होने की बजाय उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से जुड़े। जैसे उन्होंने कहा कि नाव में जो बैठेगा वही तो पार उतरेगा, मतलब जो उनके बताए रास्ते पर चलेंगे वही उनकी उस जमा की हुई शक्ति से फायदा ले पाएंगे। उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद, विरजानंद दयानंद, समर्थ रामदास शिवाजी जैसे गुरु शिष्य जोड़ियों की मिसाल दी, जहां गुरु की शक्ति शिष्य के जरिए ही तो दुनिया में फैली।
समझ गया, तो ये एकांत सिर्फ शक्ति बचाने या केंद्रित करने के लिए नहीं था, बल्कि एक खास तरह की साधना भी इसमें शामिल थी, है ना? आपने पंचमुखी गायत्री का जिक्र किया था शुरू में, ये क्या है? ये पहले वाली गायत्री साधना से अलग कैसी थी?
जी हाँ, ये एकांतवास का एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य था। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अब तक वो एक मुखी गायत्री की साधना करते आए थे, जिसका स्वरूप माँ बेटी जैसा था, मतलब स्नेह पोषण उस पर आधारित। लेकिन अब इस विशेष वेला में वो पंचमुखी गायत्री की साधना करेंगे, जिससे पांच तरह की विशेष शक्तियां उत्पन्न होंगी।
पांच शक्तियां? अच्छा, और इनका उपयोग कहाँ होना था? समाज के लिए?
हाँ बिल्कुल, समाज के लिए ही। इनका उपयोग समाज के पांच प्रमुख वर्गों को जगाने और उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने में होना था। ये पांच वर्ग थे, बुद्धिजीवी, राजनेता, कलाकार, संपन्न व्यक्ति और भावनाशील व्यक्ति। और इनमें भी उन्होंने भावनाशील व्यक्तियों को सबसे अहम माना, क्योंकि शायद वो बदलाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं, संवेदनशील होते हैं।
और उन्होंने बार बार ये भरोसा भी दिलाया कि ये सब वो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या स्वर्ग वगैरह के लिए नहीं कर रहे हैं।
निश्चित रूप से, बार बार दोहराया उन्होंने कि ये कदम दुनिया की बढ़ती समस्याओं का सामना करने और एक नए बेहतर युग, नव युग के निर्माण के लिए है। उनका कहना था कि जैसे सूरज और चांद दूर रहकर भी पृथ्वी को जीवन देते हैं, वैसे ही वो एकांत में रहकर यहाँ तक कि शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते रहेंगे, सहायता करते रहेंगे। उन्होंने मजाक में ये भी कहा था कि वो भूत बनकर अच्छे कामों के लिए लोगों के पीछे लगेंगे।
हाँ, तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि पूज्य गुरुदेव का एकांतवास कोई साधारण कदम नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी आध्यात्मिक रणनीति थी। अपनी ऊर्जा को समेटकर, केंद्रित करके मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटने की तैयारी और एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का प्रयास, ये निष्क्रियता नहीं थी बल्कि गहन सक्रियता का ही एक अनोखा रूप था।
बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि किसी मार्गदर्शक की भौतिक उपस्थिति ना होने पर भी उनके सिद्धांतों, उनकी ऊर्जा से गहराई से कैसे जुड़ा जा सकता है और अपने अंदर उस भावनाशीलता को कैसे जगाएं जिसकी बात गुरुदेव ने की, जिससे वो सूक्ष्म मार्गदर्शन हमें मिल सके, महसूस हो सके। इस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए।